हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5। समस्त कारणों के कारण। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहोणा द्रपुलिंगपुल्कषा, आभीरशुम्भा यवनाकसादया, येनेच पापा यदपाशयाशया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती, वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत, समीरिषीणां ऋषभं प्रसीदते। भुङ्क्ते महद्भिर्य इमा पुरो विभो, निर्मायशीते यदमूषु पुरुष, भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक, सोलंकृशीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे, पपुर्ज्ञानमयं सौम्यां यन्मुखं पुरुहासवम्। नारायणं नमत्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। परम सौभाग्य है कि आज हम दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। इस अध्याय में नारद मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा जी से इस भौतिक सृष्टि के निर्माण के विषय में, सृजन के विषय में सब कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी ही सृजन करते हैं तो कहीं वही तो परमेश्वर नहीं है। और साथ साथ में नारद मुनि को ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि ब्रह्मा जी तो अक्सर भगवान का ध्यान करते हैं, और अगर वो किसी और का ध्यान करते हैं तो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं हो सकते। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नारद मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा के पास जाते हैं। अब ये प्रक्रम कैसे चल रहा है कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आप मुझे सृष्टि के विषय में बताइए, तो हमने चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 25 में पढ़ा, एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यदात साक्षात यदाह हरिरात्मना। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम वही एज इट इज ज्ञान सुन रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना था, और भगवान से क्योंकि उन्होंने हृदय में ज्ञान प्राप्त किया था, फिर ब्रह्मा जी ने वही एज इट इज नॉलेज जो है वो नारद मुनि को दी थी। तो सुखदेव गोस्वामी एज इट इज वही परंपरा से आए हैं, नारद जी ने वेद व्यास जी से, और वेद व्यास जी ने वही शाश्वत जो भगवान के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है वही अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, और आज सुखदेव गोस्वामी वही ज्ञान जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, उन्हीं के शब्दों में हम तक पहुंचा रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजम् यद्विजानीह यज्ज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजम् भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज यद्विजानीहि यज्ज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। नारद उवाच, अर्थात नारद मुनि कह रहे हैं, देव देव नमस्तेस्तु, देव यानी समस्त देवताओं में, देव यानी देवता, समस्त देवताओं में सबसे महान है, आप प्रमुख है, नमस्तेस्तु, मैं आपको, तू माना आपको नमस्कार करता हूँ। भूत भावना, समस्त प्राणियों के जनक। यहाँ पर नारद मुनि अपने पिताजी को समस्त प्राणियों के जनक बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही समस्त सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, तो बड़े ही आदर से अपने पिता के साथ। वास्तव में हमें ये देखना चाहिए कि इन शास्त्रों से हमें पता चलना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने बड़ों से, अपने पिता से बात। ये नारद मुनि जो कि हमारे परंपरा के आचार्य हैं, वो अपने पिताजी को कितना सम्मान के साथ कह रहे हैं कि आप समस्त देवताओं में महान हैं और समस्त प्राणियों के जनक हैं। तत्विजानी का मतलब है कि इस ज्ञान को बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पूर्वजम का मतलब होता है आप सबसे, ज का मतलब होता है जन्म, पूर्व मतलब सबसे पहले, आपने सबसे पहले जन्म लिया है इसलिए आप ज्ञान को जानते हो, और आप क्यों के जानते हो इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ। तद विजानी ही कि मुझे बताइए, यज ज्ञानम जो ज्ञान, आत्म तत्व निदर्शनम, आत्म तत्व जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, जो दिव्य है, जो दिव्य ज्ञान, निदर्शनम यानी विशेष रूप से दर्शन करता है, जो आत्मा का विशेष रूप से दर्शन कराने वाला आत्म तत्व निदर्शनम है, वो ज्ञान में आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है, जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर रीति से परंपरा प्रणाली के विषय में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की ओर भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में की गई है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता युगो भ्रष्टो परंतप। तो भगवान ने बताया है कि ज्ञान प्राप्त करना किसी से भी नहीं होता है। भले ही कोई वेदों को कितना ही पढ़ता है, स्टडी करता है, लेकिन जब तक वो किसी परंपरा से नहीं जुड़ता तब तक तो वो इस अधिकार को प्राप्त नहीं करता कि वो किसी को शिष्य बनाकर उसको अपना ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जीव को शास्त्र को पढ़ने से समझ में नहीं आता, बल्कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा में किसी शुद्ध वैष्णव के सानिध्य को स्वीकार करते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जब गुरु महाराज की उपासना करते हैं, जब गुरु महाराज जो हैं वो हमसे प्रसन्न होते हैं। कब प्रसन्न होते हैं? गुरु महाराज कभी भी अपने, अगर कोई शिष्य उनकी सारा दिन बैठ के चापलूसी करता रहे या फिर उन्हीं की सेवा करता रहे और उनके आदेशों का पालन ना करे तो गुरु महाराज ऐसे शिष्य से कभी भी प्रसन्न नहीं होते। सच्चे गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य उनके आदेशों का पालन करे, और सच्चे गुरु का आदेश क्या होता है कि शिष्य पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित हो जाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी साधना करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और उसी ज्ञान को जो कि उसने अपने गुरु महाराज से सीखा है उसका प्रचार करें। तो जब शिष्य गुरु को अपनी साधना से, अपनी सेवा से प्रसन्न करता है, तो प्रसन्न होने के बाद गुरु के आशीर्वाद से शिष्य के हृदय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वे समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। जिज्ञासु जो शिष्य होता है उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनके विषय में यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा। हृदय के अंदर समर्पण होना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज मुझे जो आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा और अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करूंगा। विनीत होना चाहिए, चैलेंजिंग मूड के साथ किसी भी शुद्ध वैष्णव के पास नहीं जाना चाहिए और हृदय के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास इसी भाव से जाए और इस तरह से विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी भी डॉलर तथा सेंट यानी रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों की क्वालिटीज को श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया है। शिष्य के अंदर सेवा भाव होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए और संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए और गुरु के अंदर केवल एक ही हृदय की अभिलाषा होनी चाहिए कि वास्तविकता से उस शिष्य को परिचित कराएं परमात्मा और आत्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से उसे परिचित कराएं, ताकि गुरु का पहला जो मुख्य क्वालिटी होती है वो होती है करुणा। क्योंकि जीव जन्म जन्मांतर तक अपने वास्तविकता को भूल गया है, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा है। इसलिए गुरु को किसी वस्तु की लालच नहीं होती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया, अगर आपको धन के बदले में प्राप्त होता है ज्ञान, तो उस ज्ञान से वो जो सेवा भाव से प्राप्त होता है, जो गुरु, ऐसा गुरु जो कि ब्रह्मा और नारद की परंपरा से आता है, उसको रुपए पैसे से कोई लालच नहीं होती है। वो तो प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके, जब प्रामाणिक शिष्य गुरु महाराज को प्रसन्न करता है तो गुरु महाराज उसके कल्याण के लिए यह ज्ञान देते हैं। आगे नारद मुनि अपने पिताजी से कहते हैं, यद्रूपम यदिष्ठानम यत्तः सृष्टिम इदं प्रभु यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः यद्रूपम यदिष्ठानम यत्तः सृष्टिम इदं प्रभु यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्त्वं वद तत्त्ववत् यद्रूपं यदिष्ठानं यत्तः सृष्टं इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वं वद तत्त्वतः यद्रूपं यदिष्ठानं यत् ततः सृष्टम् इदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्ववत् यद्रूपं यदिष्ठानं यद्रूपं मतलब जो लक्षण है यद् अधिष्ठानं यानी जो पृष्ठभूमि है यद् सृष्टम जहां से उत्पन्न हुआ है इदम ये सारा संसार यानी इस सारे संसार के लक्षणों को भी मुझे बताइए ये सृष्टि इसका आधार क्या है वो पृष्ठभूमि क्या है वो मुझे बताइए और ये भी बताइए कि इसका सृजन किस प्रकार से हुआ है। सृष्टम इदम प्रभु यत् संस्थम यत् परम यच्च यत् संस्थम का मतलब है कि प्रतिष्ठित कैसे हुआ है इसको कौन चला रहा है यत् परम ये किसके वश में है कौन इसको कंट्रोल कर रहा है यच्च तत्त्वम यच्च जो है च तथा तत्त्वम इसका लक्षण क्या है वद तत्वत कृपा करके मुझे बताइए तत्ववत वास्तव में। यहाँ पर नारद मुनि अपने पिताजी से इस संसार के विषय में सब कुछ जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। ये वास्तविक साइंस है ये जो श्रीमद् भागवतम है वो कोई आजकल के साइंस की तरह नहीं है जो कि ये कहता है कि बस सारा संसार एक बिग बैंग से हो गया बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरे संसार का सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं जितने भी यूनिवर्सेस हैं सबका की रचना हो गई। ऐसा बिल्कुल मूर्खों वाला साइंस है ये वाला। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि अपने पिताजी से पूछ रहे हैं अनुवाद देखिए हे पिताजी कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए इसका आधार क्या है इसका सर्जन किस प्रकार से किया गया है यह किस तरह से संस्थित हुआ है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत ही तर्क संगत प्रतीत होते हैं किंतु नास्तिक लोग कोई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईश विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं किंतु नारद मुनि ऐसे नास्तिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे इन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी भी उन्हीं आजकल के जो वैज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि उनके जो फिलॉसफी है उनका कोई आधार नहीं है कोई वास्तविकता नहीं है अविवेचित है। तो ऐसे नारद मुनि को इस तरह की किसी भ्रांत धारणा की जानने की इच्छा नहीं थी बल्कि वो वास्तविक सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ज्ञान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी जो दिव्य ज्ञान होता है उसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि इसमें इस भौतिक जगत ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि भी सम्मिलित होती है यानी जीव जगत और जगदीश ये तीनों का ज्ञान मिलकर ही वास्तविक ज्ञान बनता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीव व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अंतिम नियंत्रण बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि ना तो जीव ना ही व्यावहारिक जगत संयोगजन्य सृष्टियां हैं सृष्टि एवं उसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है और शुद्ध जिज्ञासु द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तविक में जानता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो केवल इस भौतिक जगत को और अपने आप को देखकर ही ये जान सकता है कि खुद ब खुद तो नहीं हो सकता, है सृष्टि एवं उसके नियमनकारी कार्य कारणों में से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। जीव इस भौतिक जगत में आता है, अनेक अनेक कार्य, अनेक अनेक वस्तुएं जिनको भोगता है, तो वो ऐसे ही कैसे हो सकता है? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है, ऑटोमेटिकली सूर्य उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है, वायु प्रवाहित होती है, ये सब दिन रात ऋतुएं बदल रही हैं, ये सब ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? ये जगत जो इतना नियमित रूप से चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? ये जो जीव अनेकों वर्षों से, कल्पों से जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, तो दोबारा से वापस जन्म ले रहे हैं, तो ये क्रिया क्या बगैर किसी योजना के संभव है? तो जो बुद्धिमान है वो तो ये जान सकता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई है, इसका आधार कोई है, इसको चलाने वाला कोई है और इसको नियंत्रण करने वाला कोई है, और वो कौन है उसी के विषय में नारद मुनि आगे पूछते हैं। श्लोक नंबर 3 में वे कहते हैं कि पिताजी आप तो सबसे पहले हैं, सबसे पहले जीव हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूर्व में क्या हो चुका है, मतलब पास्ट में, भूतकाल में जो कुछ जितनी रचनाएं हुई वो किस तरह से और किस आधार पे हुई है वो सब आप जानते हैं। अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी आप जानते हो, और अभी जो भविष्य में होने वाला है उन सब के विषय में अभी आप जानते हो। ये सब जितनी भी सृष्टियां हुई हैं वो सब आपके लिए जानना संभव है, क्योंकि आप ही के नेत्रों के सामने ये सब कुछ हुआ है, आप इन सब के विषय में जानते हो, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। वे कहते हैं सर्वम हि तत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु कराम लकवत् विश्वम विज्ञानावसितम तव सर्वं येतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु कराम लकवत् विश्वम विज्ञानावसितं तव सर्वं येतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु कराम लकवत् विश्वम विज्ञानावसितं तव सर्वं हेतत् भवान् वेद सर्वं यानी सारी वस्तुएं ही हेतत् निश्चित रूप से भवान् वेद भवान् मतलब आप वेद मतलब जानते हैं ये सारी वस्तुएं आप जानते हैं कौन सी भूत भव्य भवत् प्रभु भूत मतलब जो उत्पन्न है भव्य मतलब जो उत्पन्न होंगी भवत् प्रभु आप सबों के स्वामी हैं कर आमलक वत कर मतलब हथेली में आमलक मतलब आंवले के समान जैसे अगर आपके हाथ में कोई आंवला रख ले तो वो कैसा है उस सॉफ्ट है टाइट है कैसा है उसका आकार कितना है वो सब आप जानते हो जान जाओगे ना क्योंकि आपके इतने अप्रोच में है तो ये सारा सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी के इतने अप्रोच में है कि ब्रह्मा जी जैसे हथेली में आंवले के समान उन सब के विषय में जानते हैं विश्वम यह ब्रह्मांड विज्ञान वसितम यानी आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत तव मतलब आपके आप इस सबके विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो जो भूतकाल में घटित हो गया है अभी वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है तो इसलिए मैं आपसे ये जिज्ञासा कर रहा हूँ। अनुवाद हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, यानी जीव जगत और जगदीश, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये तीन मुख्य जो वस्तुएं हैं, जैसे जीव, यह भौतिक जगत, और जगदीश यानी भगवान, ये सदैव कार्यशील होते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आता कि ये जीव जो है वो कार्य करना बंद कर दे, या फिर दृश्य जगत जो है वो कार्य करना, प्रकृति कार्य करना बंद कर दे, या भगवान, ये सतत कार्यशील है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्यकलापों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आंवले के विषय में सब कुछ जानता रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहां से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह से उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बनी। चूंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे उपेक्षा की कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे कि जो व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता है, जिसने सृष्टि को बनाया है समझो, या किसी भी वस्तु को बनाया है, तो वो ये जानता है कि मैंने किस आधार पर इस सृष्टि को बनाया, या कोई भी वस्तु को मैंने किस आधार पर बनाया, मेरे पास है ना इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, मेरे पास वो ज्ञान कहाँ से आया, मेरे पास वो कला कहाँ से आई, वो सब वो जान सकता है, क्योंकि उसी ने ये किया है कि किस तरह से मैंने इन वस्तुओं को जोड़ा, निर्माण किया, फलस्वरूप ये वस्तुएं बनी। तो फिर क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का सृजन किया है, तो भले ही वो सेकंड क्रिएटर है, मगर सेकंड क्रिएटर ने ये वस्तुएं, ये भौतिक जगत, ये भौतिक सृष्टि और जीवों को किस तरह से सृजन किया है, उसके विषय में वे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए नारद मुनि उनसे पूछ रहे हैं। आगे नारद मुनि कहते हैं, आगे श्लोक नंबर 4 में नारद मुनि वेद व्यास जी से ब्रह्मा जी के विषय में पूछ रहे हैं कि आप जो ये सृष्टि कार्य कर रहे हो, तो आप किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आपके ज्ञान का क्या स्रोत है, आप किसके संरक्षण में, आपको किसकी प्रोटेक्शन प्राप्त है, आप किसके अधीन ये कार्य कर रहे हो, आपकी वास्तविकता बताओ, ये सारे कार्य जो आप कर रहे हो वो आप अकेले ही ये सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न कर रहे हो, या किसी और की शक्ति के द्वारा आप ऐसा कर रहे हो। वे कहते हैं, यत् विज्ञानो यदाधारो यत् परस्त्वं यदात्मक एक सृजसी भूतानि भूतैरेवात्मा मायया यद् विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकम् एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्मा मायया यद् विज्ञानो यदाधारो यद् विज्ञानो, मतलब आपने जो इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आप सृष्टि की रचना करते हो, अलग अलग योनियां बनाते हो और उनको उनके कर्मों के अनुसार कोई दूसरा जन्म मिलता है, ये सारा ज्ञान उसका स्रोत क्या है, यद आधार हो, किसके आपके ऊपर आधार किसका है, किसका संरक्षण है, किसका प्रोटेक्शन है, यद पर वो कौन है जिनकी अधीनता में आप कार्य कर रहे हो, त्वम यानी आप, यत आत्मकम किस हैसियत से कार्य कर रहे हो, मतलब आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी हैसियत क्या है, और एक सृजसी भूतानी, एक का मतलब अकेले ही सृजसी यानी ये सारी जितनी भी सृष्टि आप करते हो भूतानी, अकेले आप अपने ही बल पर कर रहे हो, भूत है यानी भौतिक तत्वों के द्वारा सारे भौतिक तत्व आप उठा के ये सब कर रहे हो, एव आत्मा माया निश्चय ही स्वशक्ति से ये कर रहे हो, क्या ये आपको किसी का आधार है, किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यह सब कुछ अपने द्वारा ही कर रहे हो। अनुवाद, हे पिताजी आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी, अतएव वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई तो है जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृजन शक्ति से अभिभूत किया, इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती, वैज्ञानियों को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन कोई अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन इसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या किसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में ना तो कोई स्वतंत्र है ना ऐसी सृष्टि स्वचलित है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नारद मुनि पहले से ही जानते थे कि ब्रह्मा जी ने सृजन करने से पहले करोड़ों साल तक तपस्या की थी, यानी एक भगवान जो कि उन्हें तपस्या करने के बाद ये शक्ति और ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो सुप्रीम सोल कोई है जो उनको ये सारी वस्तुएं भौतिक तत्व प्रदान कर रहे हैं और उनका आधार उनके कंट्रोल के उसमें ब्रह्मा जी जो है ये सारा सृजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते जैसे प्रगतिशील जो वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट होते हैं तो वो जो कार्य करते हैं ना वो कुछ से अलग से इन्वेंट नहीं कर सकते, किसी भी जीव को किसी भौतिक तत्व को वो बना नहीं सकते, ईजाद नहीं कर सकते, बाकी जो वस्तुएं भगवान ने पहले से बनाई है ना उन्हीं के द्वारा एक नई चीज, यानी पृथ्वी नहीं बना सकते, पृथ्वी में से कुछ पृथ्वी को यूज करके जल अग्नि वायु आकाश इन सब को यूज करके कुछ वो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा अपने से कुछ नई उपलब्धि नहीं होती है, उन्हीं वस्तुओं से मिलकर बनता है संसार में जो कुछ। अब कोई भी संस्थान हो कोई भी बड़ा साइंटिस्ट हो उनको अगर ये कहा जाए कि प्रकृति से कोई भी वस्तु उठाए बगैर आप कुछ चीज इन्वेंट करके बताओ, उनके लिए संभव ही नहीं है, वो जो कुछ बनाएंगे प्रकृति की देन के अनुसार ही बनाएंगे। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने अगर इस भौतिक जगत का सृजन किया है तो अपने बल पे नहीं किया, बल्कि भगवान ने जो उनको सारी वस्तुएं प्रदान की हैं, सारी ये जो महातत्व या 24 तत्व जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इंद्रियों के विषय ये सब मिला के इनके द्वारा ब्रह्मा जी जो है वो सारी योनियों को बनाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो उन्हीं वस्तुओं से मिलाकर कोई नई चीज बनाते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी भगवान की दी हुई वस्तुओं को यूज करके उनमें से सृष्टि का सृजन स्टार्ट किया। और एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पहले से ही अस्तित्व में होता है और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करते हैं जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है, यानी उनकी बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि पहले से ही भगवान ने दी है उसके द्वारा वो इन्वेंशंस करते हैं। बाकी कोई भी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने जैसा दूसरा बुद्धि किसी को प्रदान कर सके, है ना। बुद्धि तो भगवान ने दी है, उस बुद्धि को यूज करके ही वो कार्य कर रहा है ना, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या उसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न करना असंभव है। वो ऐसी बुद्धि नहीं बना सकता। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में ना तो कोई स्वतंत्र है ना ऐसी सृष्टि स्वचालित है। ये जो सब कुछ हो रहा है वो स्वतंत्र नहीं है और ना ही कोई इन वस्तुओं को प्रकृति से लिए निसर्ग से कुछ लिए बगैर वो जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने अपने बल पर भौतिक वस्तुओं को उठाए बगैर अपने बल पर अपनी लेबोरेटरी में एक अनाज का दाना तक नहीं उगाया। नो ग्रेन कभी अनाज नहीं उगा सकते, यहाँ तक कि ग्रीन पत्ता भी नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ में जो भी वस्तुएं हमें हमारे जीवन गुजारने के लिए अत्यधिक आवश्यक है वो साइंटिस्ट नहीं बना सकते। एक बोतल ब्लड, अगर किसी को ब्लड की कमी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी लेबोरेटरी से हम ब्लड लेके आए कि भाई इसको खून की कमी हो गई है तो उसको खून दे दे, नहीं, वो ब्लड तो किसी और व्यक्ति से निकाला जाता है। और उसी तरह से अगर किसी का दिल हार्ट जो है वो रुक जाए या फिर ना किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी की किडनी खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि साइंसदान जो है वो अपने लेबोरेटरी में ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाते हैं और वो हमको ये आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं जैसे दांत या बोन्स ये बनाए वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल जो पीस हमारा बना हुआ है वो तो केवल भगवान ने बनाया है। बाकी एज इट इज इस भौतिक जगत में जीव जिस तरह है ऐसा कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं सकता है, ये सब भगवान के द्वारा ही नियमित है। और भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया गया और ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के नियंत्रण में ये सब कार्य करते हैं। आगे नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, इसी बात को और भी क्लियर करके वो पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अपनी वस्तु यूज करके कोई चीज बनाता है, जिस तरह मकड़ी की एक बहुत ही अच्छी मिसाल दे रहे हैं इस श्लोक में, वे कहते हैं कि मकड़ी जो होती है उसको जाल बुनने के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी ही लाड़ से जाल निकालती है, आत्मनिर्भर होती है और स्वयं से वो जाल बुन लेती है। तो क्या आप भी ऐसा करते हो, यानी आप अपनी ही आत्मशक्ति पर निर्भर होकर ये दूसरों से सहायता लिए बिना ही सृजन कर रहे हो या कोई है जो आपकी सहायता कर रहा है? वे कहते हैं, आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्ति अवष्टभ्य उरुणाभिरिवाक्लम। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्ति अवष्टभ्य उरुणाभिरिवाक्लम। आत्मन भावयसे तानि, आत्मन मन आत्मन यानी अपने ही द्वारा, भावयसे यानी प्रकट करते हैं, तानि वे सब, ये सब आप अपनी ही शक्ति से प्रकट कर रहे हैं। न पराभावयसे स्वयं, न मतलब नहीं, पराभावयन मतलब पराजित होकर स्वयं खुद अपने आप आत्मशक्तिम यानी आत्मनिर्भर अवष्टभ्य नियुक्त होकर ओर्णनाभि कहते हैं मकड़ी इव यानी मकड़ी की तरह या मकड़ी के सदृश अक्लमः बिना किसी की सहायता के। अनुवाद, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना ही सृजन करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आत्मनिर्भरता का एक और भी अन्य उदाहरण दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है जो अन्य किसी से सहायता किए बिना अपनी लार से शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरह से सूर्य को चमक प्राप्त करने के लिए किसी अन्य ग्रह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितने भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, वो सब सूर्य की शक्ति से ही रोशन होते हैं। तो नारद मुनि ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी ही शक्ति से आत्मनिर्भरता से ही ये सारा कार्य कर रहे हो या कोई है जो आपकी सहायता करता है। आगे नारद मुनि ब्रह्मा जी की महानता का बखान करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो कि हम देख रहे हैं, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ हो, विशेष हो, निष्कृष्ट हो, हर एक वस्तु का सृजन तो आपने ही किया है ना, क्योंकि आप इतने महान हो। तो जब सृजन आपने किया है तो हर एक वस्तु के विषय में आप ही सही तरह से जानते हो, इसलिए हम आपसे ही हर एक वस्तु के विषय में जानना चाहते हैं। वे कहते हैं नाहम वेद परम यस्मिन् न परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम् सदसत् किञ्चिदस् अन्यत् नाहम वेद परम यस्मिन् न परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम् सदसत् किञ्चिदन्यत् नाहम वेद परम। नाहम मतलब नहीं, नामना नहीं, अहमना मैं, वेद यानी जानता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं जानता हूँ, परम यानी श्रेष्ठ, यस्मिन ये मन अस्मिन न इस संसार में न परम और न अपरम। अपरम मतलब कोई निष्कृष वस्तु। इस भौतिक जगत में ना तो कोई श्रेष्ठ वस्तु और ना ही कोई निष्कृष्ट वस्तु को मैं जानता हूँ, न समम विभो और ना तो समान या जो ज्यादा मतलब निष्कृष्ट भी ना हो और ना ही ज्यादा परम हो और ना ही कोई ऐसी सेंटर की कोई ऐसी वस्तु को ना मैं नहीं जानता हूँ। नाम रूप गुण भाव्यम, नाम मतलब नाम, रूप माने लक्षण और गुण मतलब योग्यता से, भाव्यम माने सृजित श्रेष्ठ, चाहे वो सदसत, चाहे वो सत्य हो यानी नित्य हो, शाश्वत हो, असत मतलब क्षण भंगुर हो, किंचित अन्यता, किंचित मतलब या अन्य किसी तरह की कोई भी वस्तु, अन्यतः किसी अन्य स्रोत से, मतलब और किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता, चाहे वो श्रेष्ठ हो, चाहे वो निष्कृष्ट हो, चाहे वो समान भाव का हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो असत हो, चाहे वो परम हो या अपरम हो, जो कुछ भी हो उसकी सृष्टा आप हो और आप समम विभो, आप बहुत महान हो, इसलिए मैं आपसे इस ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ। अनुवाद, हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निष्कृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं
वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निष्कृष्ट हैं। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निष्कृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया है कि इनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिता ब्रह्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है, अतएव वे ब्रह्मा जी से इनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आगे नारद मुनि कहते ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब तक, हालांकि हमने संसार में हर एक वस्तु आपसे ही द्वारा सृजन करते हुए देखी है और 84 लाख योनियों को सृजन करना, उनको उनके भाग्य के अनुसार हर वस्तु देना, वो सब आप ही कर रहे हो इस क्योंकि आप बहुत महान हो। लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो हमें आश्चर्यचकित कर रही है, जो हमको समझ में नहीं आ रही है और हमारे मन में संदेह, शंका उत्पन्न हो रही है। हम उसका समाधान चाहते हैं। वे कहते हैं सभवान्न चरत घोरम यत्तपः सुसमाहित तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंका च यच्छसि सभवान चरत घोरम यत्तपः सुसमाहित तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंका च यच्छसि स भवान अचरत घोरम। स मन वह, भवान यानी आपको, अचरत यानी किया, घोरम यानी कठिन, यत तपह जो तपस्या या दान, सुसमाहिता पूर्ण अनुशासन के साथ। आप तो परम हैं, आप तो सबको सृजन करने वाले हैं, फिर भी जो आपने पूर्ण अनुशासन के साथ जो इतना घोरम, घोरम का मतलब होता है बहुत ही कठोर जो तपस्या आपने की, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी की तपस्या के विषय में पूरी तरह से जानते थे। तो स भवान अचरत, आपने फिर अगर इतने महान हो तो फिर आपने इतनी घोर तपस्या क्यों की और किस की कि तेन खेदय से नस्तम, तेन मतलब के उस कारण से, खेदय से मतलब कष्ट देते हैं, आप क्यों अपने आप को इतना तपस्या में कष्ट देते हो, न यानी हमको, त्वाम यानी आप, पराशंका ये अत्यंत ही, परा मतलब अंतिम सत्य, शंका है मेरे मन में, एक संदेह है, च यच्छसि हमें अवसर, ये आप तपस्या करके हमारे हृदय में शंका का अवसर प्रदान करते हो, क्योंकि वैसे तो आप ही महान हो, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो आपसे भी परा है, आपसे भी परम शक्ति है जिसकी आप तपस्या करते हो? तो ये मन में हमारी शंका है, कृपया हमारे इस शंका का समाधान कीजिए। वे कहते हैं फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही होना किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हम सबके लिए एक बहुत ही सुंदर आदेश दे रहे हैं कि गुरु को हमें ईश्वर की तरह पूजा जाना चाहिए, गुरु का जो है ईश्वर की तरह सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को सम्मान दे। लेकिन जो गुरु अपने आप को ईश्वर की तरह मानता है, जो ये सोचता है कि मैं ईश्वर की का ही प्रति एक ईश्वर का ही एक स्वरूप हूँ, वास्तव में गुरु जो है वो तो एक दास की तरह ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाता है। लेकिन जिस गुरु के मन में ईश्वर की तरह पूजे जाने की इच्छा होती है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण सर्वोपरि मान लिया था। नारद मुनि तो ये समझ रहे थे कि ब्रह्मा जी सब कुछ है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ, परमेश्वर तो श्रेष्ठतम ही है, उनका कोई आराध्य नहीं है। अहंग्रह हो पासिता, या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत ही पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अहंग्रह उपासना किसको कहा जाता है? जो बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं तो हमारी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर जो ईश्वर है जो उसको तो किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, अपनी भी पूजा करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसका तो कोई आराध्य नहीं होता है, तो ईश्वर बनने के उद्देश्य से उससे किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग्रह उपासना एक विधि है, लेकिन इससे वह कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। जैसे कुछ लोग ऐसी विधि को अपनाते हैं, शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करके जो बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो फिर ये एक शास्त्रों में एक विधि बताई गई है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वह कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता ऐसे कहने से। यदि मनुष्य, श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि यदि मनुष्य भगवान की उपासना करे तो महात्मा तो बन सकता है, परंतु भगवान की उपासना करके वो कभी भगवान या परमात्मा नहीं बन सकता। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को सर्वोपरि पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ, अतएव वे सही सही जानकारी चाह रहे हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भले ही किसी के अंदर कोई बहुत ही महान गुण हो, बहुत ही शक्तिमान जीव हो, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है, तो किसी को भी भगवान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये भगवान है। वास्तव में ये बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जिससे समस्त जीवों की शंका दूर हो जाएगी, और इसी तरह से समस्त शिष्यों को अपने गुरु महाराज से भी पूछना चाहिए, अगर वो किसी की साधना नहीं कर रहे हैं, अगर वो भगवान को नहीं मान रहे, फिर तो वो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है, है ना। जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता, जो भगवान को नहीं जानता, वो भला हमको उसको गुरु स्वीकार करके क्या फायदा होगा। और जो भगवान को जानता है और भगवान की आराधना करता है, भगवान को ही प्रणाम करता है, भगवान की तपस्या करता है, तो फिर उससे ज्यादा तो महान वो भगवान है। तो फिर गुरु को भगवान की तरह पूजना एक अलग बात है, सम्मान देना एक अलग बात है, लेकिन गुरु ही भगवान है ये बहुत ही गलत धारणा है। जीव को हम अपने गुरु और कृष्ण के मध्य में जो अंतर है उसे समझना चाहिए कि गुरु तो एक माध्यम है, गुरु तो वह नाविक है जो हमारे इस शरीर रूपी नौका को भाव सागर पार करा के भगवान तक ले जाने का एक माध्यम है। इसी बात को यहाँ पर नारद ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे सर्वपरि हो, क्योंकि आप तो स्वयं भी भगवान की आराधना कर रहे हो, तो फिर आप से भी ऊपर कोई है। और आगे अंतिम प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है और क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप हर एक वस्तु को जानते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे मैंने भी जितने भी प्रश्न किए हैं कृपा करके आप मुझे उनको सही तरह से उनका उत्तर देके मुझे समझाइए। वे कहते हैं एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासित एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासित एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासित एतन्मे पृच्छतः सर्वं एतन्मे यानी ये सब मैं यानी मेरे द्वारा पृच्छतः जो अत्यंत ही उत्सुकता के कारण मैंने आपसे जो जिज्ञासा की है जो पूछा है सर्वम जो कुछ पूछा है सर्वज्ञ आप सब कुछ जानने वाले हो वो सब आपको पता है और सकलेश्वर यानी संपूर्ण नियंता है आप ही तो वो कार्य करने वाले हैं तो आप उसके विषय में सही तरह से जानते हो विजानी ही यथे वेदम विजानी ही यानी अब आप कृपा करके मुझे बताइए यथेव इदम जिस तरह से ये सब है अहम बुद्धि से आप मुझे इस तरह से समझाइए कि मैं उसे समझ सकूं अनुशासिता और आपसे अच्छी तरह से एज शिष्य सीख सकूं। अनुवाद हे पिताजी आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों की नियंता हैं अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है अतएव उन्हें ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उपयुक्त समझें जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो यहाँ से नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी से सृष्टि के विषय में संपूर्ण गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं और वो सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा जी के पास गए हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करने वाले साक्षात भगवान हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सृजन का कार्य ब्रह्मा जी को ही सृजन का कार्य भगवान ने दिया है। तो ये सृष्टि परिक्रम के विषय में ब्रह्मा जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। आज सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और आप सबकी सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा।